ओम शांति। हमारे बीच में आज भगवान भाई जी आए हैं। आप महाराष्ट्र जोन से निकले हैं और 9 वर्ष देहली पांडे भवन गुलजार दादी के पास रहे। पिछले 15 वर्षों से आप मधुबन किचन की सेवाओं में हैं। 2500 स्कूलों में आपने सेवाएं दी और 900 जेलों में भी आपने सेवाएं दी। 3000 से ज्यादा लेख लिखे, 300 पत्रिकाओं में आपके लेख जाते हैं। तो आज भगवान भाई जी बताएंगे कि विघ्न व समस्याओं में हम हल्के कैसे रहें। ओम शांति।
ओम शांति। तो आज का विषय है विघ्न व समस्या में हल्के कैसे रहें, क्योंकि योग का यह पहला फाउंडेशन है। जब तक हम ये फाउंडेशन पक्का नहीं करेंगे तब तक योग भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि योग लगाने के लिए अंतर्मुखता की अवस्था जरूरी है, एकाग्रता की अवस्था जरूरी है, शांति की अवस्था जरूरी है, एकरस रहने की अवस्था जरूरी है। लेकिन जिसके जीवन में विघ्न या समस्या है ये चारों भी अवस्था से दूर हो जाता है, तो वो योग लगाने के बजाय उस समस्या का चिंतन, उन विघ्नों का चिंतन करता रहता है। और जिस कारण ज्ञान होने के बावजूद, बाबा मिलने के बावजूद, उनको जीवन का जो आनंद आना चाहिए, प्रभु मिलन का सुख मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी मधुबन में आए हैं तो मधुबन से ये लेसन पका करके जाना है, क्योंकि मधुबन या बाबा सभी समस्याओं को हरने का स्थान है। बाबा हमारी सभी समस्या हरता है और हर एक के जीवन में समस्या जरूर होती है, बिना समस्या का कोई नहीं है। रात दिन अगर हम उन्हीं समस्या का ही चिंतन करेंगे तो फिर ज्ञान का चिंतन नहीं चलेगा। तो कैसे हम समस्या और विघ्नों में हल्के कैसे रहें, उसके लिए क्या करें? तो सबसे पहले हमें यह ज्ञान होना जरूरी है कि समस्या आती क्यों है। वास्तव में समस्या या विघ्न ये हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। समस्या या विघ्न हमें लगन की अगन बढ़ाने के लिए आते हैं, और समस्या ये तो हमने अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों का फल है। अनेक जन्मों में लोगों के साथ, प्रकृति के साथ अगर हमने कुछ गलत व्यवहार किया है, वही इस अंतिम जीवन में समस्या के रूप में आता है। इसीलिए समस्या का चिंतन नहीं करना है, जिसको बाबा ने पिछले मुरली में कहा था, बच्चे पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? पुरुषार्थ में आलस और अलबेलापन क्यों आता है? कौन सा शब्द यूज करते हैं? कारण। क्या क्या कारण लगाते हैं? मेरा पति मुझे सहयोग नहीं दे रहा, इसके कारण मैं पुरुषार्थ नहीं कर पा रही हूं। मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, जिसके कारण मैं पुरुषार्थ नहीं कर रही हूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं, जिसके कारण मैं पुरुषार्थ नहीं कर रही हूं। मैं बांधेली हूं, मैं गृहस्थी हूं, मैं व्यापारी हूं, कई समस्याएं, मेरा सेंटर से घर बहुत दूर है जिसके कारण हम पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे। तो बाबा कहते ये कारण मैं नहीं सुनूंगा, ये कारण तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। अगर पति तंग करता है, वो क्यों तंग करता है? क्योंकि आपने भी उसको कोई ना कोई जन्मों में पति बनकर के तंग किया है, तो वो अपना हिसाब किताब ले रहा है। क्योंकि सबको जाना है ना वापस, तो जिसके भी कुछ बाकी हिसाब किताब क्या करना है, सुख तो करना है। तो अच्छा है उसको सकारात्मक रूप में लो, सकारात्मक रूप में, अच्छा है मेरा हिसाब किताब सुख तो हो रहा है। कोई पड़ोसी तंग कर रहा है, कोई बच्चा तंग कर रहा है, तो इन्हीं समस्याओं में हमें पहले क्या करना है, इन्हीं समस्या में हल्के रहना है। अगर ज्ञान में चलने के बावजूद भी ड्रामा का ज्ञान समझा, कर्मगति को समझा, हर एक का अपना अपना पार्ट है ये समझा, तो भी मुझे समस्या आती है, विघ्न आते हैं, इसका मतलब मैंने ज्ञान को सही रूप में नहीं समझा है, सीधी बात है। इसलिए हमें क्या करना है, समस्या में हल्के रहने के लिए सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कर्म सिद्धांत का ज्ञान। इस संसार में जो घटनाएं हो रहे हैं, जो समस्या आ रहे हैं, वो कर्मों के आधार से आती है। कुछ अच्छी घटना आते हैं, अच्छे कर्मों का फल है, बुरी घटना आते हैं, बुरे कर्मों का फल है। अगर आपने करेले बोए हैं और आम की आशा लेकर के बैठे हैं, आम कब लगेंगे? लगेंगे आम? करेले को क्या लगेगा? करेले ही लगेंगे। तो इसी तरह हमें कर्म सिद्धांत को पहले बुद्धि में रखना है, तब जाकर के समस्या और विघ्नों में कैसे रहेंगे, हल्के रहेंगे। मैं हमेशा एक बहुत सुंदर एक घटना सुनाता रहता हूं, जस्ट मैंने उसको एक मराठी मैगजीन में लिखा हुआ है, कर्म सिद्धांत की घटना। इस घटना को आप अच्छी तरह ध्यान से सुनना, जिसे आप अपने जीवन के अंदर आने वाली समस्या या विघ्नों के बारे में भी समझ सकते हैं। ये घटना कोई कहानी नहीं है, हकीकत में घटी हुई घटना है। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, झोपड़पट्टी में रहते थे, बहुत गरीब थे। तो उनके पास एक कोई मेहमान आया था, वैसे मेहमान आया था दिल्ली में खरीदारी करने के लिए, वो बहुत बड़ा होलसेल व्यापारी था। उसको कुछ पुराना हिसाब किताब भी देना था और कुछ नई खरीदारी करनी थी, इसीलिए उसने लाखों करोड़ रुपए लाए थे। लेकिन जब वो मेहमान व्यापारी दिल्ली में आया, उसी दिन दिल्ली के सब दुकान बंद थे कुछ कारण से, तो वो व्यापारी सोचता है मैं सारा दिन बैठे बैठे क्या करूं यहां, इससे अच्छा मैं जाकर के आगरा देख के आता हूं। आगरा गया, सारा दिन आगरा घूम करके देखा, लेकिन रात को उसको सोने का कोई स्थान नहीं मिल रहा है। जिस होटल में जाता था सब कहते थे भाई हमारा होटल बुक है, कोई जगह नहीं। तो वो सोचता है कि मैं अभी कहां सो जाऊं, अगर कई स्टेशन पर सो जाओ तो कहते कि मेरी बैग चोरी हो जाएगी, कई बस स्टैंड पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी, तो अब क्या करूं। इतने में उसको याद आया मेरा एक मेहमान है जो गरीब है, जो झोपड़पट्टी में रहता है, भले दूर का है लेकिन है मेहमान। तो उसका एड्रेस था, उस अनुसार वो उनके पास पहुंचा और जा करके उनके साथ बातचीत की, किसीलिए आया हूं ये बताया, खाना वगैरह खाया। रात को सोने से पहले अपनी बैग खोली उसने, कुछ कपड़े बदलने के हिसाब से। जब ब्याह खोली तो गरीब की पत्नी की नजर ब्याह के अंदर गई और उसने देखा कि 50 के 100 के 500 के नोट भरे उसके ब्याग में, पूरे नोट भरे हैं। तो उस गरीब की पत्नी को लगता है हम तो कितना गरीब है और इसके पास कितना पैसा है, तो उसको लगता है ये पैसा मैं कैसे लूं। तो रात भर उसको नींद नहीं आती। तो 12-1 बजे वो उठती है, बाहर जाते हैं और बड़ा एक पत्थर लाते हैं और पत्थर लाकर के सीधा वो सोए हुए मेहमान के सिर में जोर से डालते। ब्याग उसकी सिरानी थी तो तुरंत उसका मर्डर हो गया और फटाफट उस गरीब की पत्नी ने ब्याग ली और पति को दिखाई, कहा कि अब हमारी गरीबी खत्म हो गई। तो पति तो डर गया, कहा कि किसी को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, पुलिस को पता चलेगा। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, ये घटना केवल आपको ही मुझे ही पता है और अभी इसको खत्म करते। उनके झोपड़पट्टी के पीछे जमुना नदी बहती थी, दोनों ने उठा करके उस नदी में फेंक दिया उसको। इस घटना को भले उन्होंने पुलिस से छिपाया, लोगों से छिपाया, परमात्मा से भी छिपा सकते हैं, लेकिन कर्मों से ऐसी घटना कोई नहीं छिपा सकता। आखिर उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट खरीद किया, एक बिल्डिंग बना दी, उसके बाद उन्होंने एक कार खरीद की, एक दुकान खोला, अपने लिए अच्छे गहने बनाए, अच्छे कपड़े सिलाई की, उनकी गरीबी खत्म हो गई। उनको बच्चा वगैरह नहीं था, दोनों ही पति और पत्नी थे। तो कुछ सालों के बाद दोनों को एक बच्चा हो गया, एक ही था, इसीलिए उसको खिलाया पिलाया बड़ा किया। अचानक कुछ कारण से बच्चा बीमार पड़ा, बच्चा काफी बड़ा हुआ था, कलेक्टर बनने वाला था। तो एक ही बच्चा, इतना पढ़ा लिखा बच्चा, इसे बहुत प्यार था, उसको अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, बहुत खर्चा आया, उन्होंने गहने बेचे, सोचे कि बाद में ले लेंगे, बच्चा ठीक नहीं हुआ। आखिर उन्होंने जो कार ली थी गाड़ी वो भी बेची, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। आखिर उन्होंने जो दुकान चालू किया था वो भी बंद किया बीमारी खातिर, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। आखिर उस बच्चे को दिल्ली में दिखाया अच्छे हॉस्पिटल में, बहुत खर्चा आया, जो बनाया था मकान वो भी बेचा, बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वही व्यापारी अपना पैसा लेने के हिसाब से बच्चे के रूप में उनके पास जन्म लिया था। यह है कर्म सिद्धांत। अगर वो व्यक्ति ये सोचे कि भगवान मेरे जीवन में कितने विघ्न आ रहे हैं, मेरे जीवन में कितनी समस्या आ रहे हैं, समस्या क्या भगवान ने दी, समस्या किसने बनाई, समस्या उसने अपने खुद बनाई वो पैसे लेकर के, अगर वो ऐसा कर्म नहीं करता तो समस्या क्रिएट होती? तो ये घटना से आज हमारे जीवन में भी देखना है। आज कोई मुझे पति बनकर के तंग करता है, मैंने भी उसको कभी ना कभी तंग किया है। कोई सास बनकर के तंग करती है तो ये भी मैंने कभी ना कभी कोई ना कोई जन्म में सास बनकर के तंग किया है। कोई बच्चा शराब पी रहा है, पैसा लुटा रहा है, क्यों? इसलिए ये कर्म सिद्धांत को बुद्धि में रखना है। इस संसार की जो घटनाएं हो रहे हैं कर्मों के आधार से हो रहे हैं। कईयों को लगता है ये मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, देखो मैं इसके साथ कितना अच्छा व्यवहार करती हूं तो भी ये मेरे लिए विघ्न बनकर के आ रहे हैं। अन्याय इस संसार में नहीं है। कईयों को लगता हम ओम शांति में जाते हैं, रोज ज्ञान सुनते योग लगाते तो भी हमारे घर में समस्या आ रहे हैं। ओम शांति में क्या इस जन्म में जा रहे, पिछले जन्म में थे या उसे पिछले जन्म में थे, तो उस जन्मों के जो हिसाब किताब वो कहां गए? उसको तो आपको चुप तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए बाबा कहते बच्चे जो भी कारण है उस कारणों का क्या करो, निवारण करो, समस्या का समाधान करो, विघ्नों में हल्के रहो और तब जाकर के शांति से योग लगा सकेंगे, तब जाकर के एकरस अवस्था में बैठ सकेंगे। नहीं तो कई बोलते हैं जब योग लगाते हैं उस समय माया आते हैं। माया आते मतलब कोई राक्षस आकर के हिलाता है? माया कहां से आते? जो सारा दिन देखा सुना, किसी ने कुछ कहा, वही बातें याद आते। इसीलिए सारा दिन हमें कर्म सिद्धांत को बुद्धि में रखना है। अब समय समाप्ति की ओर जा रहा है और बिना हिसाब किताब सुक्त के कोई भी आत्मा परमधाम में नहीं जा सकती, याद रखना है। और हिसाब किताब को सुक्त करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका है योग लगा करके। आज बाबा बार बार मुरलियों में क्यों कहते हैं बच्चे योग लगाओ, बच्चे योग लगाओ। योग लगाने से जो आने वाली घटनाएं, अनहोनी घटनाएं, उसे आप बच भी सकते हैं, उसको टाल भी सकते हैं। किसे? योग लगा करके उसको योग से भी चुक्त कर सकते हैं। लेकिन आज इतना हम योग लगाते नहीं, इसीलिए विघ्न समस्या आते हैं। तो योग लगा करके भी चुक्त कर सकते हैं, ये एक तरीका है। दूसरा है उस घटनाओं को सहन करके भी चुक्त कर सकते हैं। अब समझो कोई आपके पति के साथ आपके हिसाब किताब है, तो पति जो व्यवहार करता है, जैसा व्यवहार करता है, उस बातों में शांत रहो, सहनशील बन करके रहो, उसको दुआएं दो, तो दोनों के हिसाब किताब चुक्त हो जाएंगे। ये भी एक तरीका है। लेकिन हमें जब कोई तंग करता है तो हम उसको क्या करते हैं? रोना शुरू करेंगे, बाबा ये मेरे को क्यों तंग कर रहे हैं, ये मेरे को ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो बाबा को दया आता है, बाबा क्या करता है, उस विघ्न को टाल देता है, उस समस्या को खत्म करता है। लेकिन हिसाब किताब तो खत्म नहीं हुए। फिर वही हिसाब किताब आपको धर्मराजपुरी में चुक्त करना पड़ेगा। अगर धर्मराजपुरी में आप हिसाब किताब के वश होंगे, उस समय रोना पड़ेगा। जब आप रोएंगे तो रोने वालों के आंखों के आंसू कौन पोंछेगा? इसीलिए बाबा कहते बच्चे योग लगा करके चुक्त करो, रोज एक घंटा एक्स्ट्रा योग विकर्मों को विनाश करने के लिए करो, बंधनों को खत्म करने के लिए करो, अलग से योग करो। तो इसीलिए हमें योग से चुक्त करना है या सहनशील बनकर के करना है, न कि धर्मराज की सजाओं से। धर्मराज की सजाओं में जो विकर्म विनाश करता है उसको पद नहीं मिलता, तो अच्छा कौन सा है? योग लगा करके। इसीलिए हमें समस्याओं में क्या करना है, इस कर्म गति को बुद्धि में रख करके हल्के रहना है। जब भी आप घर से निकलते हैं, निकलने से पहले सोचो आज न जाने किसके किसका हिसाब लेने के लिए कोई आएगा, तो मुझे उसको देना है। जब आप चलते चलते किसी ने गाली दी तो क्या कहो? अच्छा इसका भी चुक्त हो गया, धन्यवाद। ये नहीं कहो कि क्यों उसने गाली दी, तब हल्के रहेंगे। दूसरी बात आए विघ्न और समस्या में हल्के रहने के लिए, उस विघ्नों के दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप में लो। जो भी आपके सामने विघ्न आते हैं, समस्या आते हैं, उसके दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप में लो। एक रामायण का बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल आपको सुनाता हूं। आज ये रामायण महाभारत की घटना में क्या सिखाते हैं? सकारात्मक सोच। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने क्या किया, कई कई कोई दो चार बातें सुनाई, कहा कि तुम्हारा भी बेटा है। उसका बेटा कौन था? भरत। कहते तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम उसको भी राजा बना सकते हो। वो तो पहली सुनती नहीं, कई कई कहते तुम राम के बारे में ऐसी सोच रहे, कहते वो राम नहीं तुम्हें हराम करेगा, अपना बेटा तो अपना होता है। जब वो बात बुद्धि में लेती है तो राम को राजा बनाने के बजाय क्या निर्णय करते हैं, उसको 14 साल वनवास। तो 14 साल के लिए वनवास में गया, सीता चोरी हुई, वियोग के कारण, राम के वियोग के कारण दशरथ ने शेरी छोड़ा, लक्ष्मण भी साथ में गया, भरत भी राजा नहीं बना, उनको दर दर भटकना पड़ा। ये सब किसके कारण हुआ, मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को का पार्ट देख करके लोगों की भावना कैसी चलेगी, अच्छी चलेगी बुरी चलेगी, कहेंगे देखो इसने कितना गलत पार्ट बजाया। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मंत्रा ने जो किया ठीक किया। अगर मंत्रा ये पार्ट नहीं बजाती उसी समय तो राम क्या बनने वाला था, राजा। अच्छा वो राजा बनता, वनवा में जाता, सीता चोरी होती, जब सीता ही चोरी नहीं होती तो रावण को मारता, जब रावण को ही नहीं मारता तो राम की महिमा कौन गाता, राम को महिमा योग्य बनाने वाली कौन, हा? मंत्रा। तो राम मंत्रा को दुआ देगा या बदुआ देगा, दुआ देगा। यह है उस विघन का दृष्टिकोण पॉजिटिव। आज राम के जीवन में इतने ऋषि मिले, तपस्वी मिले, इतना अंगद मिला, हनुमान मिला, किसके कारण मिला, हा? किसके कारण, उस मंत्रा के ऐसे कर्मों के कारण। तो इसी तरह ड्रामा अनुसार हर ब्राह्मणों के पास या हर इंसान के पास एक दो मंत्र जरूर होते हैं, हाँ? और वो किसी लिए होते हैं, हाँ? परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए, या महिमा योग्य बनाने के लिए, महिमा योग्य बनाने के लिए। लेकिन आज जो हम समस्या आते हैं या विघ्न आते हैं उसी मंत्र को देखते आते हैं, कहते बस इसको देखते ही मुझे क्या होता है, हाँ? मेरा दिमाग ही गर्म हो जाता है, इसको देखते ही मुझे बहुत, हाँ? मेरा योग ही नहीं लगता। लेकिन याद रखना है वही आत्मा जो आपको तंग कर रहे, परेशान कर रहे, वही महिमा योग्य बनाने वाली है। आज वो आपके जीवन में नहीं होती, जैसे राम के जीवन में जो मंत्र आई उसके कारण हनुमान मिला, अंगद मिला, महान पुरुष मिले, इसी तरह आज हमारे जीवन में भी आज दादिया मिल रहे, इतने सारे महान ब्राह्मण परिवार मिला, किसके कारण मिला। अगर वो आत्मा परेशान नहीं करते तो आप भक्ति करते, शांति के लिए दर दर भटकते, कहते बस हमारे घर में सब कुछ ठीक है, हमें शांति की जरूरत नहीं है। तो उस आत्मा ने जब विघ्न डाला तो आपको शांति के लिए खोज के लिए गए, और शांति के खोज के जाने के बाद इतना अच्छा परिवार मिला, बाबा मिला, तो उस आत्मा को क्या करेंगे, दुआ देंगे या बदुआ देंगे, दुआ देंगे। इसीलिए विघ्न डालने वाला हमारा परम मित्र है। तो इसीलिए विघ्न डालने वालों से क्या रहना है, कैसे रहना है, हल्के रहना है। तो ये पाठ हमें यहां से पक्का करना है, जो विघ्न डालता है, समस्या क्रिएट करता है, उसको दुआ ही दो। और इसके लिए क्या बनना है, सहन शक्ति की देवी बनना है, सहन शक्ति की देवता बनना है। और जब उन आत्माओं के बारे में जो विघ्न डालते हैं, समस्या क्रिएट करते हैं, उनके लिए जब आप सकारात्मक रूप में रहेंगे तब आप योग का अभ्यास कर सकेंगे। अन्यथा ज्ञान है, सब कुछ है, तो भी आपका योग नहीं लग सकता, प्रभु मिलन का आनंद नहीं ले पाएंगे। विघ्न और समस्या के पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ कल्याण समाया हुआ होता है, याद रखना है। आपको लगता है विघ्न, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ कल्याण समाया हुआ है। इसलिए गीता का सार क्या है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा। इसीलिए मेरे साथ ये पक्का पाठ करना है, मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और वही होना चाहिए, इससे ही मेरा कल्याण है। माउंट आबू जा रहे हैं, माउंट आबू जाते जाते कई जगह पर ढलान है, वो ढलान आपको नीचे ला रहे, कहां लेके जा रहे हैं? वो भी आपको माउंट आबू लेके जा रहे हैं। इसी तरह जीवन में आने वाली विघ्न और समस्या भी आपको अच्छाई की तरफ लेके जा रहे हैं, इसीलिए उसे घबराना नहीं है। तो मधुवन से जाने से पूर्व ये पक्का करना है, बाबा मेरे जीवन में नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मैं एकदम ठीक हूं, और जो भी मुझे प्रॉब्लम्स दे मेरा उससे कल्याण हो गया, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक घटना आपको सुनाते हैं। एक माता जी थी, अज्ञान काल की बात आई, बहुत गुस्से वाली थी। तो एक बार उसको इतना गुस्सा आया, अपने छोटा सा बच्चा था, वो समझाए नहीं समझ रहा था, तो पांव से उसको रगड़ करके मार रहे थे। तो किसी ने उसको खींच के निकाला, कहा कि तुम मां हो या क्या हो, तुम ऐसा काम करती हो? तो उस माता जी को इतना वैराग आता है कि मैं इतना गुस्सा कैसी करती हूं। तो किसी माता ने कहा कि तुम भक्ति कर, तुम भक्ति वगैरह नहीं करती इसीलिए तुम्हें वैराग गुस्सा आता है। तो वो भक्ति करते हैं, तो भक्ति करते करते रोज मंदिर में जाते हैं। तो एक बार उसी मंदिर में ब्रह्मा कुमारी की प्रदर्शनी लगी थी, तब वो प्रदर्शनी देख करके उसको ये ज्ञान बहुत अच्छा लगा, वो ज्ञान में चलती है। तो दो साल के बाद फिर मधुवन में बाबा से मिलने के लिए आई, तो बाबा से मिल रही थी, पर्सनल मिल रही थी, ऊपर की बात आई है। तो बाबा को क्वेश्चन करते, कहते बाबा मेरा योग ही नहीं लगता। तो बाबा कहते क्यों? कहते बाबा मैंने एक जिंदगी में बहुत गलत काम किया। तो बाबा ने कहा कौन सा? कहते मैंने गुस्से से एक बार बच्चों को रगड़ करके मारे थे, वो दृश्य मुझे योग में याद आता है, तब मेरा योग नहीं लगता। तो बाबा ने क्या जवाब दिया होगा? बाबा ने कहा कि बच्ची जो तुमने किया वो ठीक किया, अगर उस समय वो काम नहीं करती तो आज यहां होती? तुमने वो काम किया, तुम्हें वैराग आया, तुमने भक्ति की, भक्ति करते करते ज्ञान मिला और उसके कारण तुम यहां आयु, क्योंकि उस आत्मा के साथ तुम्हारा कोई हिसाब किताब था। इसी तरह आज तक कई कई भाई बहने क्या करते हैं, कहते हैं कि मैंने जीवन में एक बहुत गलत काम किया तो हम यहां आने के लायक नहीं है, हम ब्राह्मण कहने के लायक नहीं। लेकिन नहीं, आपने जो किया वो अच्छा किया, अगर वो काम नहीं करते तो आज यहां होते? कहते ना पापी का पाप का घड़ा भरने के बाद क्या होता है, वो फट जाता है, फिर उसको भगवान मिलता है। इसीलिए हमें कभी भी बीती हुई बातों को याद करके वर्तमान को फीका नहीं बनाना है। इसीलिए विघ्न और समस्या में क्या रहना है, हल्के रहना है। भाग्यशाली आत्मा वो है जिनको विघ्न ज्यादा आते हैं, और जिनको विघ्न ज्यादा आते हैं, समस्या ज्यादा आते हैं, सत्युग में उनका पद ऊंचा है, याद रखना है। अगर आपको आपके जीवन में विघ्न नहीं आता, समस्या नहीं आती, इसका मतलब आपका योग इतना लगन वाला नहीं है, क्योंकि जो योग लगाता है उसके जीवन में बहुत विघ्न आएंगे, और जितने विघ्न आएंगे उतना आगे बढ़ता जाएगा, उतना ही संसार से उपराम हो जाएगा। जैसे कहा, समझो कोई माता जी है, उसका अपना पति तंग नहीं करता, तो उस माता जी का योग किसे लगता? फिर उस पति से लगता, मेरा पति बहुत अच्छा है, कभी तंग नहीं करता, वही पति याद आएगा। जितना वो विघ्न डालेगा कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। इसीलिए बाबा कहते ना, जो बांधीली माता है उनका योग मेरे से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनको विघ्न ज्यादा है, इसीलिए दिल से बाबा बाबा निकलता रहता है। तो इसीलिए संगम युग में विघ्न आना कोई खराब बात नहीं है। विघ्न आए लेकिन आपका मन और बुद्धि उस विघ्न के वश न हो जाए, वो भाग्यशाली आत्मा है। मन और बुद्धि को विघ्न टच न करे, और उसके लिए क्या याद रखना है? कर्म गति को याद रखना है। दूसरी बात कौन सी सुनाई? उस विघ्न के दृष्टिकोण को पॉजिटिव लेना है। और एक आपको घटना सुनाते हैं, कैसे पॉजिटिव लेना है। एक महाराष्ट्र के बहुत प्रसिद्ध एक संत थे जिनका नाम था संत तुकाराम महाराज, कहते बहुत भक्ति करते थे। तो गली के लोगों ने उस संत को भक्ति करने के लिए मना किया, तभी भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो सभी लोगों ने एक दिन पकड़ करके उस संत के गले में सब्जियों की माला पहना दी, बैंगन टमाटर आलू मटर सभी सब्जियां, और मुंह काला करके बाल उतार करके हल्दी का लेप लगा दिया, और उस संत को एक गधे पर बिठा करके गली गली में घुमाया। इतना भी नहीं छोड़ा, जहां उनकी पत्नी रहती थी वहां तक लाया और पत्नी को घर से बुलाया, कहा देखो ये तुम्हारे पति देव। वो देखती मेरे पति के साथ ऐसा व्यवहार क्या, उसको बहुत गुस्सा आता है। तो जिन्होंने ऐसा किया था सबको गाली देते, तो उस समय संत कहते इनको गाली क्यों दे रहे, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी लाकर दी है, वो माला पहनाई थी, और कहा कि इनको गाली क्यों देते, मैंने तो अपना गांव देखा ही नहीं था, आज ये लोगों ने अच्छी तरह क्या क्या मुझे पूरा गांव घुमा करके लाए। और कहा कि इनको गाली क्यों दे रहे, मेरे सिर में तो फोड़े हो रहे थे, लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगा औषध किया, इनको गाली मत देना, चाय पानी पिलाना। उस विघन और समस्या को उसने क्या लिया, पॉजिटिव। तो ये बहुत बड़ी कला है, इसको कहते ज्ञानी। एक ने कहा दूसरे ने माना, इसे जीवन में सरलता आएगी, सहनशीलता आएगी, अंतर्मुखता आएगी। इसीलिए विघन और समस्या में हल्के रहने की कला सीखनी है, क्योंकि जब विघन में आता है, समस्या आती है, तो मन उसे क्या बनता है, भारी बनता है। विघ्नों का चिंतन, समस्या का चिंतन करने से मन कैसा बनेगा, भारी। और याद रखना है, जिसका मन भारी रहता है, भारी मन परमधाम में उड़ नहीं सकता। एक तो लोहे का भी मन होता है, देखा होगा ना, लोहे के मन को लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा परमधाम में, नहीं जाएगा, हल्का मन ऊपर जाता है। इसलिए विघ्नों से हमें बचना है, विघ्नों में हल्के रहना है, ताकि मन कैसा रहेगा, हल्का रहेगा। मन हल्का और बुद्धि स्वच्छ, तो इसलिए मन हल्का और बुद्धि स्वच्छ रखना है। अगर ये दो चीजें हैं, तब जाकर के हम प्रभु चिंतन, आत्म चिंतन कर सकेंगे। तो मधुवन से जाने से पूर्व तो हमें क्या करना है, इस पाठ को पक्का करना है, जीवन की समस्या को क्या करना है, समाधान रूप में परिवर्तन करना है, तब हम योग लगा सकेंगे। ठीक है, ओम शांति।